नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं एक ऐसी किताब के साथ जो अमेरिकी इतिहास के शायद सबसे नाजुक और विस्फोटक दौर को बहुत करीब से देखती है, एरिक लार्सन की द डीमन ऑफ अनरेस्ट।
बिल्कुल, ये किताब हमें अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ने से ठीक पहले के उन बहुत महत्वपूर्ण 5 महीनों में ले जाती है, नवंबर 1860 से अप्रैल 1861 तक।
हाँ, और ये आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है?
देखिए, ये इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे गहरा राजनीतिक विभाजन, मतलब नेताओं की गलतियां और आपसी शक, ये सब मिलकर किसी भी देश को तबाही के रास्ते पर धकेल सकता है। ये सबक आज के दौर में तो शायद और भी ज्यादा अहम हो गए।
सही बात है। तो चलिए इस किताब के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का एक मजबूत लोकतंत्र अपने ही इतिहास के सबसे खूनी संघर्ष तक आखिर पहुंचा कैसे।
हाँ, तो शुरुआत शायद लेखक से करनी चाहिए, एरिक लार्सन। ये जाने जाते हैं अपने खास अंदाज के लिए जिसे नैरेटिव नॉन फिक्शन कहते हैं।
मतलब सच्ची घटनाओं को कहानी की तरह कहना।
हाँ बिल्कुल, वो सच्ची घटनाओं और तथ्यों पर आधारित किताबें लिखते हैं, लेकिन उन्हें एक कहानी की तरह बुन देते हैं। उनकी रिसर्च बहुत गहरी होती है।
हाँ, मैंने पढ़ा है उनकी दूसरी किताबों के बारे में भी, जैसे द डेविल इन द व्हाइट सिटी या इन द गार्डन ऑफ बीस्ट्स। वो पुरानी चिट्ठियां, डायरी, सरकारी दस्तावेज, इन सबको खंगालते हैं।
जी, और फिर किरदारों और घटनाओं को ऐसे जिंदा कर देते हैं जैसे हम कोई थ्रिलर पढ़ रहे हों।
और इस विषय के लिए, मतलब अमेरिकी गृह युद्ध से ठीक पहले का वक्त, उनका ये तरीका क्यों खास है?
इसलिए खास है क्योंकि लार्सन सिर्फ बड़ी राजनीतिक घटनाओं या तारीखों पर फोकस नहीं करते, वो उन इंसानी भावनाओं को पकड़ते हैं जिन्होंने उन घटनाओं को शक्ल दी। नेताओं का अहंकार, उनका डर, उनकी महत्वाकांक्षाएं और शायद सबसे बढ़कर उनकी भयानक गलतफहमियां।
तो वो दिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ बड़ी ताकतों से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र और उनकी कमजोरियों से भी बनता है।
बिल्कुल, यही उनकी खूबी है कि कैसे साधारण इंसानी कमजोरियां असाधारण ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दे सकती हैं।
तो किताब द डीमन ऑफ अनरेस्ट, ये असल में किन दिनों की कहानी है?
ये उन 154 दिनों की कहानी है, नवंबर 1860 में अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति चुनाव जीतने से लेकर अप्रैल 1861 में फोर्ट सम्टर पर हुए हमले तक, करीब 5 महीने। ये वो वक्त था जब अमेरिका सचमुच टूटने की कगार पर खड़ा था।
और लार्सन का मुख्य तर्क क्या है इसमें, मतलब उनका सेंट्रल आइडिया?
देखिए, लार्सन का सबसे चौंकाने वाला तर्क शायद ये है कि गृह युद्ध कोई ऐतिहासिक मजबूरी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसे टाला ही नहीं जा सकता था।
अच्छा।
हाँ, वो कहते हैं कि ये उस दौर के नेताओं की व्यक्तिगत विफलताओं, गलत फैसलों और लगातार छूके हुए मौकों का नतीजा था। एक तरह से ये एक टाली जा सकने वाली त्रासदी थी।
और किताब का नाम द डीमन ऑफ अनरेस्ट, अशांति का दानव, ये क्या दर्शाता है?
सबने मिलकर तर्क और समझदारी को जैसे किनारे लगा दिया था। ये दानव नेताओं और आम लोगों दोनों पर हावी हो गया था।
तो ये किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे माहौल का जिक्र है।
जी हाँ, लार्सन हमें उस दौर के अहम किरदारों के जरिए इस कहानी को दिखाते हैं। लिंकन का अपना संघर्ष, हताश हो चुके राष्ट्रपति बुकानन की बेबसी, दक्षिण के वो जोशीले नेता और फोर्ट सम्टर में फंसा हुआ वो एक वफादार मेजर।
और हम देखते हैं कि कैसे एक राजनीतिक संकट धीरे धीरे बातचीत के दायरे से निकलकर हिंसा तक पहुंच गया।
बिल्कुल, स्प्रिंगफील्ड से वॉशिंगटन डीसी के सत्ता के गलियारों तक और फिर चार्ल्सटन हार्बर की उस किलेबंदे तक।
तो चलिए उन 5 महीनों की कहानी के कुछ अहम मोड़ों पर नजर डालते हैं। शुरुआत होती है नवम्बर 1860 में लिंकन के चुनाव जीतने से।
हाँ, और ये जीत भी कोई भारी बहुमत वाली नहीं थी। उन्हें 40% से भी कम वोट मिले थे और किसी भी दक्षिणी राज्य में वो जीते नहीं थे। दक्षिण कैरोलिना ने इसे अपने अस्तित्व पर खतरा माना और तुरंत संघ से अलग होने की योजना बनाना शुरू कर दिया।
लेकिन उत्तर में लोग इसे गंभीरता से ले रहे थे।
शुरू में नहीं, यहीं से गलतफहमियों का सिलसिला शुरू होता है। उत्तर के कई नेता इसे महज गीदड़ भपकी, मतलब एक पॉलिटिकल धमकी समझ रहे थे। उन्हें लगा दक्षिण असल में अलग होने की हिम्मत नहीं करेगा।
वो दक्षिण के गुस्से और इरादे की गहराई को समझ नहीं पाए।
बिल्कुल, कम आंक लिया उन्होंने। इस बीच जो मौजूदा राष्ट्रपति थे जेम्स बुकैनन, वो पूरी तरह नाकाम साबित हुए।
लार्सन उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर दिखाते हैं जो हालात के सामने एकदम बेबस है,
मतलब कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे थे।
हाँ, उनकी सोच बड़ी अजीब थी। वो मानते थे कि राज्यों को अलग होने का हक तो नहीं है, पर फेडरल सरकार को उन्हें रोकने का भी अधिकार नहीं है।
अरे, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है ना? इस सोच ने एक खतरनाक पावर वैक्यूम, मतलब एक शक्ति शून्यता पैदा कर दी। संकट बढ़ता गया और राष्ट्रपति कुछ कर ही नहीं रहे थे।
तो क्या समझौते की कोई कोशिश नहीं हुई?
कोशिशें तो हुई। जनवरी 1861 तक कई प्रस्ताव आए, जैसे सीनेटर क्रिटेंडन की योजना थी कि गुलामी को एक खास भौगोलिक रेखा के दक्षिण में जारी रहने दिया जाए, लेकिन ये सब नाकाम रही।
क्यों? कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पाया?
मुश्किल था, क्योंकि दोनों तरफ के जो कट्टरपंथी थे वो हावी हो चुके थे। लिंकन की रिपब्लिकन पार्टी गुलामी के फैलाव को रोकने के वादे पर जीती थी, वो अपने मूल सिद्धांत से पीछे नहीं हट सकते थे।
और दक्षिण में?
दक्षिण में वो नेता जिन्हें फायर ईटर्स कहा जाता था, मतलब वो बेहद जोशीले और कट्टर अलगाववादी नेता, वो किसी भी कीमत पर गुलामी बचाना चाहते थे और संघ से अलग होना चाहते थे। वो किसी समझौते के मूड में थे ही नहीं, तो बातचीत की गुंजाइश जैसे खत्म ही होती जा रही थी।
माहौल बिगड़ता जा रहा था, और इसी तनाव के बीच वो फोर्ट सम्टर वाला मामला सामने आता है, दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटन हार्बर में।
हाँ, वहां जो यूनियन आर्मी के मेजर थे रॉबर्ट एंडरसन, दिलचस्प बात यह कि वो खुद दक्षिणी थे, केंटकी से, और दास मालिक भी थे, लेकिन सम के प्रति वफादार थे। उन्होंने अपनी छोटी सी टुकड़ी को एक कमजोर किले फोर्ट मोल्ट्री से हटाकर ज्यादा सुरक्षित किले फोर्ट समटा में शिफ्ट कर दिया।
इस कदम का क्या असर हुआ?
उत्तर में तो जोश भर गया, लेकिन दक्षिण में गुस्सा। फोर्ट समटर अब यूनियन यानी संघ के अधिकार का प्रतीक बन गया, और वो भी ठीक एक अलगाववादी राज्य के दिल में।
स्थिति नाजुक हो गई होगी।
बहुत ज्यादा।
जनवरी में सरकार ने एक निहत्थे जहाज स्टार ऑफ द वेस्ट से वहां रसद पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उस पर किनारे से गोलियां चलाई गईं।
तो ये तो लगभग युद्ध की शुरुआत हो गई।
हाँ, हो सकती थी, लेकिन उस वक्त दोनों पक्ष थोड़ा पीछे हट गए, पर तनाव चरम पर पहुंच गया था। फिर मार्च 1881 में लिंकन राष्ट्रपति पद संभालते हैं। उनके सामने सबसे पहली चुनौती यही थी।
बिल्कुल, उन्हें आते ही पता चला कि फोर्ट सम्टर में रसद कुछ ही हफ्तों में खत्म होने वाली है। अब फैसला लेना था, किला छोड़ दें या मदद भेजें। उनका अपना मंत्रिमंडल भी इस पर बटा हुआ था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सेवार्ड किला छोड़ने की सलाह दे रहे थे।
तो लिंकन ने क्या किया? ये तो बहुत बड़ा फैसला था।
हाँ, और उन्होंने कई हफ्ते इस पर विचार किया। लार्सन बताते हैं कि वो बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे थे। आखिर में उन्होंने एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, चतुर योजना बनाई।
अच्छा, क्या थी वो योजना?
उन्होंने तय किया कि फोर्ट सम्टर को सिर्फ खाना भेजा जाएगा, हथियार नहीं, और इसकी सूचना हमले से पहले ही दक्षिण कैरोलिना के गवर्नर को दे दी जाएगी।
ये चतुर कैसे हुई?
ऐसे कि अब गेंद कॉन्फेडरेसी यानी दक्षिणी राज्यों के पाले में डाल दी गई थी। अगर वो शांतिपूर्ण रसद, मतलब खाने के सामान को आने देते, तो संघ का अधिकार बना रहता, किला उनके हाथ में रहता, और अगर वो इस मानवीय मिशन पर गोली चलाते तो हमलावर वो कहलाते, युद्ध शुरू करने का इल्जाम उन पर आता।
वाह, ये तो वाकई बहुत सोचा समझा कदम था। तो दक्षिणी नेताओं ने क्या चुना?
उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। कॉन्फेडरेट राष्ट्रपति जेफरसन डेविस और उनके मंत्रिमंडल ने फोर्ट सम्टर पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया। उन्हें लगा कि ये उनकी नई बनी सरकार की संप्रभुता साबित करने के लिए जरूरी है।
और फिर?
और फिर 12 अप्रैल 1861 की सुबह 4:30 बजे चार्ल्सटन हार्बर में तोपों ने गरजना शुरू कर दिया। फोर्ट सम्टर पर बमबारी शुरू हो गई। कहते हैं एडमंड रफीन, जो एक कट्टर अलगाववादी थे, उन्हें पहली गोलियों में से एक दागने का सम्मान दिया गया था।
और चार्ल्सटन के लोग?
लार्सन लिखते हैं कि शहर के लोग अपनी छतों पर खड़े होकर इसे किसी आतिशबाजी की तरह देख रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये किस भयानक चीज की शुरुआत है।
कितने घंटे चली है बमबारी?
करीब 34 घंटे। 14 अप्रैल को मेजर एंडरसन ने आत्मसमर्पण कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस सीधी लड़ाई में कोई मारा नहीं गया था।
लेकिन इसका असर तो बहुत गहरा हुआ होगा।
हाँ, इस हमले ने वो कर दिया जो महीनों की बहस और राजनीति नहीं कर पाई थी। इसने बटे हुए उत्तर को एकदम एकजुट कर दिया। लिंकन ने सेना में भर्ती का आह्वान किया और हजारों लोग फौरन शामिल होने के लिए आ गए। अब युद्ध तय था। वो अशांति का दानव जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, अब पूरी तरह से देश पर हावी हो चुका था।
ये पूरी कहानी सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे क्या मुख्य बातें या थीम उभर कर आती हैं?
देखिए, कई गहरी बातें हैं। पहली तो ये कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं, कैसे राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रीय एकता को दांव पर लगाया जा सकता है, और नियम कानून कैसे चरमपंथियों के सामने कमजोर पड़ सकते हैं।
हाँ, ये तो आज भी सोचने वाली बात है। और दूसरी
बात है व्यक्तिगत चरित्र का महत्व, बुकानन की हिचकिचाहट, उनकी अनिर्णयता, और दूसरी तरफ लिंकन का संयम, उनके सिद्धांतों पर दृढ़ता। और दक्षिण के नेताओं का वो अति आत्मविश्वास या कहें अहंकार, इन सब ने इतिहास का रुख मोड़ा।
मतलब इतिहास सिर्फ बड़ी ताकतों या घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि व्यक्तियों के फैसलों से भी बनता है।
बिल्कुल। तीसरा पॉइंट है गलत अनुमान लगाने की भारी कीमत, मिसकैलकुलेशंस। दोनों पक्ष लगातार एक दूसरे को गलत समझते रहे। दक्षिण ने सोचा उत्तर लड़ेगा नहीं, उत्तर ने सोचा दक्षिण सिर्फ धमकी दे रहा है। ये गलतफहमियां आखिर में घातक साबित हुई।
और एक बात आपने कही थी, कट्टरपंथ और प्रचार का असर।
हाँ, चौथा अहम मुद्दा, दक्षिण के वो फायर ईटर्स जैसे गुटों ने डर, झूठे सम्मान की भावना और गलत जानकारी का इस्तेमाल करके लोगों को युद्ध के लिए तैयार किया। ये दिखाता है कि कैसे चरमपंथी आवाजें संयम और मध्यमार्ग की आवाज को दबा सकती हैं।
और सबसे बुनियादी मुद्दा क्या था इस सब के पीछे?
सबसे बुनियादी मुद्दा, और लार्सन इसे बिल्कुल साफ करते हैं, वो गुलामी का था। राज्यों के अधिकार या संविधान की व्याख्या की सारी बहसें आखिर में गुलामी की संस्था को बचाने और उसे फैलाने की दक्षिणी इच्छा से जुड़ी थी। यही संघर्ष का असली केंद्र था।
किताब में कुछ विचार या लाइनें हैं जो बहुत असर छोड़ती हैं।
हाँ, कई हैं। जैसे ये अशांति का दानव वाली बात ही ले लीजिए। ये कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरे समाज पर छाए जुनून या उन्माद की तरह है, जिसने तर्क को खत्म कर दिया था और लोगों को संघर्ष की तरफ धकेल रहा था।
एक तरह का सामूहिक पागलपन।
हाँ, कह सकते हैं। और फिर लिंकन की चुनौती भी देखने लायक है। उन्हें ताकत भी दिखानी थी और सब्र भी रखना था, सरकार का अधिकार भी जताना था, पर लड़ाई शुरू करने वाला भी नहीं बनना था। वो समटर पर रसद भेजने की उनकी योजना इसी मुश्किल संतुलन का सटीक उदाहरण है।
और मेजर एंडरसन की स्थिति, वो भी काफी मार्मिक लगती है।
बिल्कुल, उनके लिए ये राजनीति नहीं कर्तव्य का मामला था। वो एक सैनिक थे जो अपने देश को टूटते देख रहे थे और ऊपर से आदेश का इंतजार कर रहे थे, एक टूटते हुए गणतंत्र के अकेले प्रहरी जैसे। उनकी कहानी उस दौर के बहुत से आम लोगों के असमंजस को दिखाती है।
और वो चार्ल्सटन वाली बात की, लोग छतों से लड़ाई देख रहे थे।
हाँ, लार्सन बताते हैं कि चार्ल्सटन के ड्राइंग रूम्स में युद्ध की चर्चा एक अजीब किस्म के उत्सव के माहौल में होती थी। सम्मान और गौरव की रोमांटिक बातें होती थीं, लेकिन आने वाले औद्योगिक नरसंहार, उस भयानक खून खराबे की हकीकत का किसी को अंदाजा चक नहीं था। ये दिखाता है कि युद्ध की कल्पना और उसकी असलियत में कितना फर्क होता है।
ये सब सुन के लगता है कि इस इतिहास से आज के लिए भी बहुत कुछ सीखने को है।
हाँ बिल्कुल, कई सबक हैं। पहला तो संकट के समय नेतृत्व कैसा होना चाहिए। बुकानन की निष्क्रियता एक चेतावनी है कि टालमटोल कितनी खतरनाक हो सकती है। वहीं लिंकन का तरीका, शांत रह के जानकारी जुटाना, विकल्पों पर गहराई से विचार करना और फिर दृढ़ता से फैसला लेना, ये आज भी प्रासंगिक है।
और दूसरा सबक शायद राजनीतिक ध्रुवीकरण के बारे में।
हाँ बिल्कुल, दूसरा सबक है राजनीतिक ध्रुवीकरण के खतरे को समझना। ये किताब दिखाती है कि जब समाज दो ध्रुवों में बट जाता है, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और जब लोग सिर्फ अपनी ही बात को सच मानने लगते हैं, तो क्या हो सकता है। ये आज के माहौल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
सही बात है। और तीसरा?
तीसरा, गलत सूचना और भड़काऊ भाषा का प्रभाव। जैसे उस दौर में फायर ईटर्स भावनाओं को भड़का रहे थे, डर और नफरत फैला रहे थे, वैसे ही आज सोशल मीडिया के दौर में भी होता है। हमें बहुत सजग रहने की जरूरत है और सुनी सुनाई बातों पर, खासकर जो भड़काऊ हों, उन पर यकीन करने से पहले 100 बार सोचने की जरूरत है। मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच बहुत जरूरी है।
और आखिरी, शायद सबसे जरूरी सबक।
हाँ, आखिरी और शायद सबसे अहम, वो है लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं का सम्मान। ये किताब याद दिलाती है कि लोकतंत्र कोई गारंटी नहीं है, ये अपने आप नहीं चलता। इसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। नियमों का पालन करना, चुनाव के नतीजों को स्वीकारना, शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद व्यक्त करना और किसी भी हालत में राजनीतिक हिंसा को नकारना, संस्थाओं पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही? व्हाट वाज योर फाइनल टेक अवे?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास पहले से लिखा हुआ नहीं होता। इट्स नॉट प्री डिटर्मिंड। ये हमारे, मतलब उस वक्त के लोगों के फैसलों का नतीजा है। ये जानना एक तरह से डरावना है कि अमेरिका टूटने के कितने करीब था और शायद कुछ अलग फैसलों से, कुछ अलग नेताओं से युद्ध टाला जा सकता था। पर यह एक उम्मीद भी जड़ाता है कि मुश्किल से मुश्किल दौर में भी सही नेतृत्व, सही फैसले वाकई फर्क ला सकते हैं।
और मेरे लिए शायद नेतृत्व में चरित्र का महत्व सबसे बड़ा सबक है। नेताओं का चरित्र, उनकी नीयत, उनकी क्षमता, ये कितना मायने रखती है। और साथ ही ये याद रखना कि वो अशांति का दानव, यानी गहरा विभाजन, गुस्सा और आपसी दुश्मनी, ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए एक स्थायी खतरा है। इससे बचने के लिए हमें लगातार संवाद, आपसी समझ और एक साझा पहचान बनाए रखने की जरूरत है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।